यदाचार्य परावृत्तो समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण,
का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप पिछले काफी सप्ताह से सुन रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद, और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि प्रहलाद महाराज हम सबके हीरो हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने रूम्स में स्टूडेंट्स पोस्टर्स लगा के रखते हैं अपने आइडियल्स के, तो क्रिकेट स्टार को हीरो, उसी ढंग से हम सबके जीवन में जो प्रहलाद महाराज हैं हमारे हीरो हैं। हम सब जब साधक भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, तो उस समय हम घबरा जाते हैं। उस समय प्रहलाद महाराज का स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज की कथा स्वयं चैतन्य महाप्रभु पंडित से 100 बार ही सुन चुके हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा रानी है, वो पूर्ण रूप से इसमें आनंद देते थे प्रहलाद महाराज की कथाओं में। तो हम अगर भक्ति में दृढ़ता चाहते हैं, हमेशा उत्साहित रहना चाहते हैं, हमेशा अपने हृदय को करुणा से भर कर रखना चाहते हैं, तो हमें प्रहलाद महाराज के प्रसंग से बहुत शिक्षा प्राप्त होगी। कोई कह सकता है कि प्रहलाद महाराज तो महाभागवत थे, महाजन थे, उनको इतनी बड़ी समस्याएं आई, तो वो तो हमेशा ही आनंद में रहेंगे ही रहेंगे, हम लोग कैसे इसको समझें? ठीक है, लेकिन जो समस्याएं प्रहलाद महाराज को आ रही थी, उस अनुपात में उस डिग्री की समस्या हमारे पास नहीं आती। हमको जलते हुए तेल में नहीं फेंका गया, हमको पहाड़ से ऊपर नीचे नहीं गिराया गया, और हमें हाथी के पैर के नीचे नहीं गिराया गया, हमें हमारे ऊपर त्रिशूलों से आक्रमण नहीं किया गया। हमारे पिताजी माताजी हो सकते हैं कुछ अपोजिशन करें, हिरण्यकश्यप की तरह इतने पावरफुल नहीं है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ नहीं आती। हमारे यहाँ क्या समस्याएं आती हैं? किसी ने हमें मानने दिया, किसी ने हमारे से रोटी सीधी बात कर दी, कोई हमें गलत समझ लिया, किसी ने हमारी आलोचना कर दी, हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, हमारी बात नहीं मानी गई, उसी में हम बहुत उत्साह खत्म हो जाते हैं। और देखिए प्रहलाद महाराज क्या उनके अड़चने थी और हमारी क्या अड़चने हैं। अगर जिन छोटी छोटी अड़चनों के आगे भी हम प्रहलाद महाराज के सिखाए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आज के प्रसंग में बताया जा रहा है कि जब प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकश्यप ने बहुत सताया, तब भी उसको कुछ भी बात मांगा नहीं हुआ, तो शरणागत ने उनको समझाया कि चिंता मत करो, छोटा बच्चा है, इसको इतना सीरियसली नहीं लो, हम इसको धर्म की शिक्षा देंगे, धर्म अर्थ काम के, तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस ढंग से उसको स्कूल में जाते थे, वो पढ़ाते थे, प्रहलाद महाराज चुपचाप सुन लेते थे। प्रहलाद महाराज ने यदाचार्य प्रावृत्तो गृह में यदि कर्म सु, जब वो शिक्षकगण को घर में कुछ काम होता था, रिसेस पीरियड, टिफिन आवर्स, खाने का समय, तो वो चले जाते थे। जब टीचर्स क्लास में नहीं होते, बच्चे क्या करेंगे? शरारतें करेंगे, शोर मचाएंगे, तो वह ऐसे बच्चे बड़े खुश, टीचर चले गए, शाना मर्ग चले गए, तो उन्होंने बुलाया था तो चलो अपना खेलते हैं फटाफट आओ। दहला मारा को अच्छा नहीं लगता खेलना, एक समय भी एक क्षण भी वो बिना कृष्ण भाना को उतारा नहीं चाहते थे। तो फिर प्रहलाद महाराज ने उनको उपदेश दिया अगले श्लोक से और अगले चैप्टर में बहुत सुंदर सुंदर उपदेश प्रहलाद महाराज ने हमें सुनने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज कितनी विपरीत परिस्थितियों में है, फिर भी कितने उत्साहित है, कितने उत्सुक है प्रचार करने के लिए। प्रहलाद ने सोचा कि ये छुट्टी का समय है, लड़के कह रहे खेलो, प्रहलाद महाराज नहीं, मैं मौका है, बहुत सुंदर मौका है, शहर भर में है, अब उनको मैं प्रचार करता हूँ, है ना। तो प्रहलाद महाराज लड़कों को सिद्धि कर रहे, सुनो सुनो सुनो, देखो मेरे को कितने कष्ट आ रहे हैं, मेरी कितनी दयनीय स्थिति है, मेरे पिताजी मुझे मारते हैं, टीचर मेरे कितना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी बात को सुनो। उन्होंने लड़कों को क्रिटिसाइज करने के लिए, पिता को, टीचर्स को, या अपने पे कुछ सिंपैथी लेने के लिए नहीं, उन्हें बोला वो उनको मुस्कुरा कर देख रहे थे, क्यों मुस्कुराते, करुणावश, कि ये लोग किस चीज को आनंद मान रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, सुख को दुख समझ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने करुणावश उनको बुलाया और उनको प्रचार किया, बताया कि भौतिक जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। तो इस ढंग से प्रहलाद महाराज हालांकि पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में मग्न थे, प्रहलाद का अर्थ है प्रकष्ट रूपेण आह्लाद, प्रकष्ट आह्लाद का मतलब है आनंद, प्रकष्ट रूप से वो आनंद में थे हमेशा, आत्माराम थे, और जो उनके मित्र थे वो द्वंद्वाराम थे, पिछले श्लोक में जब मुझे बोले थे द्वंद्वाराम मतलब कि जो पूर्ण रूप से द्वंद में लीन रहते हैं, सुख और दुख में ही मग्न रहते हैं, बहुत सुख हुआ तो उसमें मग्न हो गए, बहुत दुख हुआ तो उसमें मग्न हो गए। जब व्यक्ति सुख और दुख में इतना मग्न हो जाता है तो अपनी प्राइम ड्यूटी परम कर्तव्य को वो भूल जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज द्वंद्वाराम नहीं थे, द्वंद का कोई असर ही हुआ उन पे, इतने ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, प्रकाश रूप में प्रहलाद हमेशा आनंद में ही है, उनको कोई सहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्या सहन, उनको लगा ही नहीं किसी को मारा है, इतना प्रेम में डूबे हुए, तो उसी प्रेम को वो शेयर करना चाहते थे अपने मित्रों से, उसी आनंद को वो शेयर करना चाहते थे, यही प्रीचिंग है, यही प्रचार है। और ये करुणा, जितना हमारे हृदय में प्रेम होगा उतना हमारे हृदय में करुणा होगी, और जितने हमारे हृदय में करुणा होगी उतना मालूम चलेगा कि हम अध्यात्मिक कितने स्तर पे हैं, कितने हमने अध्यात्मिक उन्नति की है। तो प्रहलाद महाराज अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने मित्रों के बारे में सोच रहे हैं और उनको बता रहे थे, और आपको बताता हूँ। तो एक भक्त होता है वो कभी भी अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं होता, प्रहलाद महाराज भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे, उनको क्या आवश्यकता थी प्रचार करने की, हम जैसे साधकों के लिए प्रचार एक साधना है, बुक मैराथन में जबरदस्ती में गए तो ये लो गीता की वीडियो जाओ बांटो, नहीं नहीं प्रभु जी लो और लो, जबरदस्ती भेजते हैं ताकि बोलते करोगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, जाओ साधना है आपके। तो प्रहलाद महाराज तो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे, उनको क्या आवश्यकता थी स्टूडेंट्स को पकड़ने की, वो समझ सकते थे ये सब बेकार के लोग हैं, असु के बच्चे हैं सब, इनको क्या मालूम मनुष्य का क्या वैल्यू है, मुझे तो प्रेम प्राप्त हो चुका है, कुछ असर नहीं हुआ, इतने आक्रमण हुए मैं वैसे का वैसा हूँ, अरे छोटी बातों में खुशी हो रहे हैं, टीचर चले गए तो हंस रहे हैं, कोई बात है। तो प्रहलाद महाराज ने इनको कोई सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था कि किनके बीच में आपके फंस गया है, कब जा हुआ है, प्रहलाद महाराज बोले नहीं उनको करना है, इनसे उनको मैंने प्रेम देना है, क्योंकि जितना मैं प्रेम बांटूंगा उतना मुझे प्रेम मिलेगा, आनंदम बोधि वर्धना, मेरा आनंद मेरी एक्सप्रेसिव और बढ़ेगी। तो एक भक्त हमेशा अवसर ढूंढता है प्रचार करने के, प्रेम बांटने के, एक्सप्रेसिव शेयर करने के, एक भक्त हमेशा लालची होता है, जैसे एक बिजनेसमैन हमेशा सोचता रहता है प्रतिक्षण अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाओ, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा कि इतने करोड़ रुपए हो गए मेरे बैंक में, अब थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं और बढ़ाओ और बढ़ाओ। इसी ढंग से एक भक्त अपने चेतना को और विकसित करना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी की घोषणा चैतन्य महाप्रभु पहले ही कर लेते उनके जन्म से पहले ही, हाँ नरोत्तम वो बोला था चैतन्य लोगों को कि मैं उसके लिए कृष्ण प्रेम पद्मावती नदी में छोड़ के जा रहा हूँ। नरोत्तम दास जी 11-12 वर्ष के हुए, उन्होंने नदी में स्नान किया, श्याम वर्ण को उनका देह थी, बिल्कुल उनकी कांति बदल गई, सुनहरे रंग की कांति हो गई, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। उसके बाद वो शांत नहीं बैठे, चुपचाप कृष्ण प्रेम मिल गया, जीवन का लक्ष्य क्या चाहिए, वृंदावन गए, वृंदावन जाके लोग ना समझे कितनी मिनियर उन्होंने सेवा की, कमल मंदिर को साफ किया, अपने इस प्रेम को और बढ़ाना चाहते थे। इसी ढंग से हम भक्तों को भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कई बार लगता है सोलह माला हो रही है, बढ़िया रीडिंग हो रही है, अच्छी पोजिशन मिल गई, अब हम संतुष्ट हैं। हम यहाँ पर अपनी साधना को एंजॉय करने नहीं आए, हमारी असली एंजॉयमेंट सेवा है। प्रहलाद महाराज उसमें भी सेवा में लगे हुए हैं। अगर भक्तों कई बार कोशिश भी करें साधना एंजॉय करने की, तो भगवान करने में नहीं देते। ये अनुभव है, भगवान कोई ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा मसाला डाल देंगे, साधना एंजॉय कर लेते बिल्कुल साधना, उस व्यक्ति को फिर संघर्ष करना ही पड़ता है। तो संघर्ष ही जीवन का सार है, जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हम भगवान को अपने आकर्षित करेंगे। तो प्रहलाद महाराज जैसे एक बिजनेसमैन, जैसे एक कामुक व्यक्ति हर क्षण ढूंढता रहता है कहाँ अनुमति मुझे मिलेगी, उसी ढंग से प्रहलाद महाराज बहुत ग्रीडी है, लौले हो भी बोले इतना लौले है उनके अंदर कि कैसे मैं इस प्रेम को बांटूं। ये ईगरनेस, ये उत्साह हमें प्रहलाद महाराज से सीखने को मिलता है। जब एक भक्त में बहुत उत्साह होता है प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो उसकी सेवा के मार्ग में आगे जितनी भी अड़चने हैं वो अवसर बन जाते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। किसी भी मार्ग में आप देखेंगे, जैसे उदाहरण बिल मंगल ठाकुर जी का चिंता मरण नामक दृश्य से वासक्त थे, तूफानी रात को उसे मिलना चाहते थे, तो जब नदी पार करनी थी तो कोई नाव नहीं, एक लाश को पकड़ के वो चले गए। और फिर जब उसके घर में ऊपर चढ़ना था खिड़की पर, तो रस्सी उनको लटकी दिखाई, वो रस्सी क्या थी, सांप। वैसे एक नॉर्मल व्यक्ति होते इतने उत्साहित ना होते तो सांप को देखकर भाग जाते, नदी में लाश को देखकर डर के भाग जाते, लेकिन वही उनको उन्होंने उनकी मदद लेकर बहुत चिंता बढ़ के पास गए। तो जो अड़चने थी वो अवसर बन गए, जो ऑब्स्टिकल्स थे वो अपॉर्चुनिटीज बन गए। प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में है, बल्कि कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी है इनको प्रचार करो, है ना, प्रचार करने का अवसर है। हमारे पास लोग कई बार एरोप्लेन से जाना प्रेफर नहीं करते, ट्रेन से जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? ट्रेन में क्यों, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने को मिलेंगे, आराम से बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कीर्तन करेंगे, प्लेन में क्या कीर्तन करेंगे, है ना। और जैसे भक्त लोग जाते हैं दिल्ली में भी कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग उठी दौड़ते हैं, भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं, चलो किताबें निकाली गाड़ी से, सबको किताबें बांट सकते हैं या आराम से चैटिंग कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बन गई, जो अड़चन थी वो अवसर बन गया। श्रीला प्रभुपाद जब गए बॉम्बे स्ट्रीट में, तो जिन परिस्थिति में प्रभुपाद रहते थे हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जहाँ रहते थे, मुकुंद गोस्वामी लिख रहे हैं पुस्तक में, हमेशा मूत्र की दुर्गंध आती रहती थी, यूरिन की। आप सोचिए ऐसे कमरे में रहना जहाँ हमेशा यूरिन की स्मेल आ रही है, और सब लोग ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, और प्रभुपाद वहाँ प्रचार करते थे, और जब उनके प्रचार कथा सुनने आते थे हिप्पी साथ अपने कुत्ते पर ही लेके आते थे, क्लास में कुत्ता लेके आया हुआ, कोई बिल्ली लेके आ रहा सामने, और वहाँ तक गंदी स्मेल आ रही है, उल्टे सीधे गंदे बाल नहाए नहीं, ऐसे लोग सामने बैठे हैं, क्या उत्साह है कथा करने का। आपसे बहुत सुंदर तिलक लगाया मैंने धोनी ने, आया थे दाढ़ी वाला कोई व्यक्ति सामने कुत्ता रख के और गंदी स्मेल आ रही है, और स्वामी जी प्रभुपाद वृंदावन से आए, कोई बोलने का उत्साह होगा, तो प्रभुपाद वाले तो बहुत बड़ी समस्या है, अब इसका कैसे उपयोग किया जाए। प्रभुपाद ने फिर बाहर एक पोस्टर लगा दिया, प्लीज टाई योर एनिमल्स विद दिस पोल, दिस पोल में जो यार जो बेचारे जितने कॉपरेट करते थे कुत्ते मेरी बाहर बांध देते थे, पहले प्रभुपाद रूम में एंटर करने होते थे, सब अपने अपने ऊपर लगे हैं, सब मिलने वाले हैं, एक बार तबियत खराब हो गई, महाराज अगर सिंह हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में डाल दिया, बहुत सूझ गए थे, तो आईसीयू में तो बड़े सीरियस पेशेंट्स होते हैं, तो देखा एक आसपास का पेशेंट बड़ा सीरियस हो गया, सारे डॉक्टर आ रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूछा भक्त से क्या बात है, महाराज बड़ी सीरियस कंडीशन है, महाराज ने आईसीयू में जोर से बोलना शुरू कर दिया, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और कुछ ही क्षण में श्री छोड़ दी। उसके बाद जब दूसरा पेशेंट भी सीरियस हो रहा है, महाराज फिर से गोविंदा गोविंदा बोलना शुरू किया, उसने भी श्री छोड़ दिया।
आईसी वाले परेशान होते हैं, बाहर तो बाहर ट्रांसफर कर दे।
तो देखिए महाराज की चेतना देखिए, उस अवस्था में भी महाराज को खुद इतनी पीड़ा थी, लेकिन महाराज देख रहे वो शरीर छोड़ने वाला है, भगवान का नाम सुनता है गोविंदा गोविंदा, दो का उद्धार कर लिया महाराज उस परिस्थिति में भी जाते हैं शॉर्ट। तो ये भक्त लोग अवसर ढूंढते हैं, भक्त लोग अपने बारे में चिंता नहीं करते कि मेरी क्या हालत हो गई है, मैं कहाँ आ गया हूँ, नहीं, अवसर ढूंढते हैं कैसे कैसे हम दूसरों को ये संदेश पहुंचाएं, कोई भी क्षण मिस नहीं करना चाहेंगे। फिर जैसे कि अगर हम उत्साहित नहीं है तो ये सारी तरह जो अपॉर्चुनिटीज है हमें बढ़ने लगे, अच्छा लगे। कई बार हम लोग गुरु महाराज से नजर मिला के चलते हैं, कोई सेवा ना देते हैं कुछ, तो सेवा का जो अवसर होता है वो बढ़ नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब हम उत्साहित नहीं है सेवा करने के लिए। अगर हम उत्साहित हैं तो भक्ति किसी भी परिस्थिति में जरूर नहीं सकती, भक्ति करने से आए तो क्यों आपूर्ति होगा, कोई भौतिक अवस्था हमें भक्ति करने से रोक नहीं सकती, हम खुद अपनी भौतिक अवस्थाओं में फंस कर भक्ति को रोक देते हैं, भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। अगर हम अपने बाहर की परिस्थितियों से के बारे में ही चिंतित रहे कि जब तक ये परिस्थितियां ठीक नहीं होगी मैं सेवा नहीं कर सकता, तो हम कभी भी उत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां कभी हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगी। अगर हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुकूल नहीं है, अगर हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुकूल है तो पूरी सृष्टि हमारा सहयोग देगी, और अगर हमारी इच्छा अपना कुछ स्वार्थ है तो पूरी सृष्टि हमें अपोज करेगी, प्रकृति के लिए मानना नहीं पड़ेगा। मम एवं सजीव लोके जीव भूतस्य नात्रा प्रकृति स्थानी कर्षति, हर व्यक्ति प्रकृति से संघर्ष कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो जब तक हम इन भौतिक अवस्थाओं से पीड़ित रहेंगे, ये कहेंगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या इन परिस्थितियों को सुधारा क्यों नहीं जा रहा, तो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा और फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्योंकि वो परिस्थितियों को बदल नहीं पाएगा, और द्वेषी रहेगा दूसरों की अच्छी परिस्थितियों को देखकर। तो ऐसा व्यक्ति द्वेषी कुंठित परेशान व्यक्ति कैसे सेवा में उत्साहित हो सकता है, जब थोड़ी सी उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी उत्साहित हो जाएगा सेवा करने के लिए, नहीं तो हमें बाहरी परिस्थितियों में निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज कोई बाहरी परिस्थितियों में निर्भर नहीं थे, उनको मौका मिला प्रचार शुरू कर दिया, सेवा शुरू कर दी। इसलिए भक्ति करने से हमें कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। प्रहलाद महाराज के पास कोई फैसिलिटीज नहीं थे, आयो अच्छा वाओ मेरे पास एक बढ़िया सा आईफोन है, बढ़िया सा क्या बोलते हैं उसको आईपैड है, ये भी आपको दिखाता हूँ, ये प्रोजेक्टर मेरे पास कुछ नहीं है, बोले प्रचार कैसे कर, कौन सी लैपटॉप नहीं है मेरे पास, कौन सी प्रोजेक्टर नहीं है, कौन सी वो नहीं है। अरे प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं था, केवल क्या था, सर्विस एटीट्यूड था, एक भावना थी, एक हृदय में करुणा थी इसे शेयर करना। तो हम लोग कई बार फैसिलिटीज और परिस्थितियों में फंस जाते हैं, हम इतने मोहताज हो जाते हैं कि अपनी सेवा की भावना को हम विकसित नहीं कर पाते। इसके जाने पास लोग बता रहे थे कि अभी तक कोई ऐसा समय नहीं आया, आप जानते हैं कि मायापुर में जुलाई और जून जुलाई में बाढ़ आ जाती है, तो कई फोटोज में देखेंगे जो कि उस अवस्था में भी लोग पर्यटक लोग नाव में आते हैं, यहाँ तक पानी होता है, मंदिर में कई सांप भी होते हैं, कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि वर्षा के समय बाढ़ के समय भी वहां पे भोग लगाने में या आरती करने में रुकावट आई हो या फिर डिले कर दिया हो। हर चीज समय में सेवा नहीं होती, बाढ़ भी आ गई तभी सेवा नहीं होती, और ना ही सेवा की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो ये हमारा भाव होना चाहिए, ये प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं। और ये उत्साह जो है, ये आतुरता, ये उत्सुकता, ये प्रचार करने का करुणा वश प्रचार करने की उत्सुकता आती है, जितना हम अपने जीवन में विनम्रता का अनुशीलन करेंगे, ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम अपने आप को विनम्र बनाने का प्रयास करेंगे उतना हम हमेशा उत्साहित रहेंगे। नारद मुनि जी पचेतस को उपदेश देते हुए भागवत में 34 खंड में कहते हैं कि भगवान को बहुत आसानी से कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट केवलम सर्वेन्द्रियों की शांति तुष्ट के पाशु जनार्दना। नारद मुनि जी बता रहे हैं दया सर्वभूतेषु, अगर हमें भगवान को बहुत शीघ्र ही प्रसन्न करना है, श्री राधे राम का नाम जप करते हैं, श्री कृष्ण का नाम करते हैं, चरणामृत करते हैं। तो दया सर्वप्रति, हमें सब जीवों पर दया करने का की प्रैक्टिस करनी चाहिए। गरुड़ पुराण बताया गया है कि अगर हम अपने से कम विकसित अध्यात्म जीवन में कम विकसित लोगों पर दया नहीं करते हैं तो हमेशा अपने आप को अपूर्ण अनुभव करेंगे। दया करना बहुत आवश्यक है, करुणा करना बहुत आवश्यक है, एक हमारे लिए साधना है। हम बोल सकते हैं हमारे लिए करना भी है लेकिन साधना हम करना है। तो दया सर्वोपदेश, सब जीवों पर दया। तो सब जीवों पर दया कौन कर सकते हैं? संतुष्ट जो कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट है। पहला महाराज त्रिनाल के सुनिचे तरोर अपनी सहिष्णुना अमानी ना मान दे कीर्तने सदाहरे, इस श्लोक को पूरा अपने जीवन में उतार के दिखा रहे हैं। पहला महाराज इतने बड़े, इतने अपने पिता ने उतना धन किया दैत्यराज हिरण्यकश्यप और ऐसे टीचर शंभु और अमरत और सभी असुरों के संतानों के बीच में पहला महाराज स्थित हुए। कोई भी भक्त ऐसी परिस्थिति में रहना नहीं चाहेगा, लेकिन पहला महाराज ने सबको सहन किया, प्रॉब्लम किया। लेकिन पहला महाराज ने दो चीजें सहन नहीं की। नंबर एक कि मैं किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को ना भूलूं, और नंबर दो जो मेरे आस पास के लोग हैं हर परिस्थिति में मैं इनको कृष्ण भावामृत दे सकूं। तो इन दो चीजों पर उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, इसको सहन नहीं किया, और उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से जो कठिनाइयां आ रही थी उन्होंने को बिल्कुल सहन किया। तो ये विनम्रता है, संतुष्ट हर परिस्थिति में हम संतुष्ट रहे। अगर हर परिस्थिति में मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं दूसरों के भलाई के बारे में कैसे सोच सकता? मैं हमेशा अपने बारे में चिंतित रहूंगा कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं दूसरों के भलाई के बारे में क्या सोचूंगा? मैं अपने बारे में चिंतित रहूंगा तो मैं करुणा क्या करूंगा, दया सर्वोपदेश कैसे करूंगा? अपने आप पर ही दया करता रहूंगा कि मैं ही दया नहीं हूं, मेरे कोई दया ही नहीं करता। तो ये विनम्रता है। विनम्रता का लक्षण ये है कि व्यक्ति अपने बारे में बहुत कम सोचता है और दूसरों को सम्मान देता है और दूसरों के विषय में सोचता है। जितना हम सेल्फ कॉन्शियस होंगे उतना हमारा हृदय कठोर होगा, उतनी हमारी मानसिकता संकीर्ण होगी। पहला महाराज अपने बारे में सोच नहीं रहे कि मेरे साथ देखो क्या क्या हुआ, ऐसे भी कोई पिता होते हैं, ऐसे भी कोई टीचर होते हैं। पहला महाराज सीधा प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी विनम्रता है। तो इसका हमें अनुशीलन करना चाहिए। जितना हम अपने जीवन में विनम्रता लाएंगे उतना हमारे हृदय में करना और उतना हम प्रचार कर पाएंगे। और ये विनम्रता कैसे आई? दया सर्वभूतेषु संतुष्टं येन वा। अगला क्या बताएगा? सर्व इंद्रियों को शांति अच्छा, क्योंकि सारी की सारी इंद्रियों को उन्होंने नियंत्रित किया हुआ है। शांत कैसे रह सकते हैं, संतुष्ट कैसे रह सकते हैं? इंद्रियों को संयमित किया हुआ है। तो विनम्रता की शुरुआत इंद्रियों को संयम से। अगर इंद्रियां ही हमेशा एजिटेटेड है, उत्तेजित है, हम विनम्रता का मिश्रण नहीं कर सकते। अब इंद्रियों को संयमित कैसे किया? पूर्ण रूप से मन को कृष्ण की सीमा में रखा है। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सा होता मति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च धेय पूज्यश्च नित्यदा। सुख गोस्वामी भगवान के पहले से बताते हैं तस्माद् एकेन मनसा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एक मन से क्या करना चाहिए? भगवान सा जो भगवान सभी भक्तों की जो पालन करता है, क्या करना चाहिए उनके विषय में? श्रोतव्य कीर्तितव्य धेय पूज्यश्च नित्यदा, उनके विषय में हम श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें और उनकी पूजा करें नित्यदा, हमेशा हर परिस्थिति में। तो इस जन से पहला महाराज विनम्रता से थी, तभी उनके जीवन में हमेशा इतना उत्साह रहा। जब कोई व्यक्ति मिशनरी होता है, बहुत सुख होता है, उत्साहित होता है प्रचार करने के लिए, तो वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में भाव भक्ति के नौ लक्षणों का वर्णन करते हैं। उसमें पहला लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी हम व्यर्थ गवाना नहीं चाहेंगे। बौद्ध जीवन में हम देखते हैं किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उस समय व्यर्थ नहीं कहा था। आपको मालूम है जब बोले कैसे सोया करते थे, घोड़सवारी करते थे। इतना कौन सा व्यर्थ बताए, घोड़े पर बैठे बैठे सो जाते थे। क्योंकि पूरे विश्व को जीतने समय बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु शिवा सामने घर में गए, उन्होंने मनुष्य जीवन सोने के लिए थोड़ी मिला है, पूरी रात कीर्तन करेंगे चलो। क्या ये एक व्यक्त एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। स्वामी महाराज के प्रवचन बता रहे थे कि अगर कोई भक्त कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद कुछ क्षण बिना कृष्ण भावना छोड़े रहता है, मतलब कि ऐसे काम करता है जो कृष्ण भावना में अनुकूल नहीं है, कुछ समय भी बिताता है अगर ऐसे, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उसको एक कन्विक्शन है कि भौतिक जीवन में सुख है। अगर हमारे कुछ क्षण ऐसे बीत जाते हैं जब हम कृष्ण भावना में नहीं है, इसका मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि भौतिक जीवन में सुख है, तभी तो हम कृष्ण भावना नहीं हो रहे। लड़के खेलने को कह रहे हैं लाख खेलना, अरे एक समय में एक क्षण ही व्यर्थ कर सकते हैं, चलो यहाँ पे आओ मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ। वो उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। पहला महाराज ऐसे उनका हो क्षण अमृत गए, चलो क्या धर्मार्थ काम बता रहे, चलो मैं रिलैक्स करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, कोई रिलैक्सेशन का कंसेप्ट नहीं होता भक्तों के जीवन। 1975 में श्रीमद् प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो भक्तों ने उनको परामर्श दिया कि आप पर्थ में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा वहाँ पे वातावरण है, वहाँ पे विश्राम कीजिए। तो प्रभुपाद चले गए, तो वहाँ पे उनके शरण थे अमोघा। तो प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद ने बोला कि अकेले या कुछ है, तो बोला देखो कोई व्यक्ति मिले जिससे बातचीत करो। अमोघा सुबह सुबह निकल गए वहाँ पे, वापिस आए शाम को खाली हाथ, कोई था साथ में। प्रभुपाद के गार्लैंड लेके आए थे, तो उनके बाद प्रभुपाद बोला वेरी नाइस गार्लैंड। तो अमोघा देखो ऐसा लगा कि हाँ फूलों की माला तो बहुत अच्छी है, लेकिन खाली हाथ है किसी को लेकर नहीं है। तो बोले प्रभुपाद कोई क्रिश्चियन वो भी नहीं मिले चर्च से, कोई मिला नहीं, कोई फिलोसफर्स में नहीं मिल पाए। तो फिर उनको लगा कि प्रभुपाद यहाँ रिलैक्स करने नहीं है, वो सभी प्रभुपाद रिलैक्स करने आए क्या जरूरत है। तो देख रहे हैं कि जो प्रीचिंग है वही प्रभुपाद का रिलैक्सेशन था, वही उनका कार्य था, वही उनका कर्तव्य था, वही उनकी सेवा थी, वही उनका मिशन था प्रीचिंग, बस यही उनका रिलैक्सेशन। एक बार इस उम्मीद गोपाल कृष्ण महाराज जी के जो प्रश्न सर पर बता रहे थे कि महाराज बाहर से आए विदेश से बहुत भटके हुए थे, फिर आते ही हमारे मीटिंग और ब्रीचिंग एंगेजमेंट्स। तो महाराज ने बोला अपने सर्वेंट को मैं थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करूँगा। ठीक है महाराज, मैं सब कुछ चेक कर दिया। बैठने जाने लगे महाराज कुर्सी पर बैठते फोन आ गया, तो फोन में कहीं विदेश के गुरु भाई का फोन आया। तो महाराज ने कुछ समय हंस कर गुरु भाई से बात की, अपने वाटर से फोन रखा फिर चल पड़े। सेवन बोला महाराज रेस्ट नहीं कर रहे, हो गया रिकॉर्ड से बात हो गया, हो गया रिलैक्सेशन। आचार्य बता दें साधक रिलैक्सेशन क्या है, चप्पा वॉक। आप ज्यादा थक रहे हैं जब तो बहुत बैठ के जब करते थे तो रिलैक्स करना, बाहर मॉर्निंग वॉक में जब किया, ये रिलैक्सेशन दैट्स ऑल। ये कह रहे हैं देखते हैं भक्ति ज्ञान के बाद भी कुछ वर्षों के बाद भक्त लोगों के पुराने संस्कार जाग जाते हैं, पुराने हम लोग मिस करते हैं। वाह क्या क्रिकेट मैच देखा करते थे, वो जो आनंद था जब भारत जीतता था वो आनंद मुझे अभी कीर्तन में नहीं मिलता। आप सोचिए जब लास्ट बॉल में छक्का मार के अगर जीती थी वो जो मैं उछला था अब मैं और आने नहीं छक्का। जब फर्स्ट जे फर्स्ट शो फिल्म देखी थी क्या लगा था, जब वो सीरियल देखते थे पूरा एब्जॉर्ब हो जाते, अब वो भागवतम के अध्ययन में एब्जॉर्प्शन नहीं है। कुछ सालों के बाद ये अनुभव होना शुरू है, वो पुरानी चीजें याद आती है, हम जब यहाँ से निकले थे हाँ ये किया है कितना हो। तो जो पुराने संस्कार जो हमने जो हमें सुख मिला था वो उसको हम दोबारा से मिलना चाहते हैं। तो देखते हैं भक्त लोग टीवी देखना शुरू करते हैं, आपको भी अनुभव होगा दीक्षा लेने के बाद भक्त लोग टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, स्कोर्स में इंटरेस्ट देखते हैं, क्या क्रिकेट का स्कोर चल रहा है देखते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, बहुत बड़ी साइंस है। कुछ साल भक्ति बहुत सख्त रहता है, कुछ नहीं कट 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 कुछ नहीं, इसको बोलते हैं प्योर डिवोटी सिंड्रोम। बस बन गया शुद्ध बन गया, और उसके बाद ये पुराने संस्कार आ जाते हैं, व्यक्ति इतना समय इतना व्यर्थ ना होता है। टीवी जैसे जो पूरा इल्यूजन मोह उसमें फंस जाता है। ऐसा जो शुरू होता है कुमार जाते हैं, जब भक्त ये भूल जाता है कि उसके गुरु ने उसको कितनी करुणा की है, जब गुरु की कृपा को भूल जाता है तो अपने हृदय खोल कर वो सारी भौतिक इच्छाओं को निमंत्रण दे रहा है, आओ मेरे अंदर। यानी कि जब हम भूल जाएंगे हम मर्सी केस है, मैं यहाँ पे हूँ कृपा के कारण, मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो हम हमेशा विनम्र रहेंगे। जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है कुछ साल भक्ति करने के बाद, साधना करने के बाद हमें तथाकथित सफलता उपलब्धियां मिलती हैं, तो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ये ढीलापन झूठे अहंकार का लक्षण है। तब हम जो हम भक्तों ने गुरु ने हमें कृपा की उसको भूलते हैं और फिर भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं और फिर ये संस्कार जागृत होते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। इसलिए कुछ भक्तों तो अपने इंद्रियों को संयमित करके स्थूल रूप से निवृत्ति नहीं करते। बोले कैसे करेंगे, भक्तों के समाज में भी हमारी पोजीशन है, किसी को मालूम चल गया हमें सिनेमा हाउस में देख लिया किसी ने, प्रभु जी आप भी यहाँ पे कंसर्न है, हम प्रेसिडेंट होते हुए सिनेमा हाउस में कोई टिकट लेकर पकड़ रहे, प्रभु जी क्या हो गया, या कोई टीवी देखते हुए पकड़ रहे, तो ये कैसे करना, हमें तो कर नहीं सकते, नहीं नहीं पाप है, पाप है, पाप है, नहीं करेंगे। तो फिर सूक्ष्म रूप से जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, सूक्ष्म रूप से यही जो काम वासना है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, फिर क्या होता है, उत्साह होगा, हमारा उत्साह, हमारी ईगरनेस, आतुरता भक्ति में अपनी चेतना को विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि हायरार्की में, ऑर्गेनाइजेशन में पद के लिए उत्सुकता रहती है कि हाँ अब मैं वाइस प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट, अब जीबीसी, अब सेक्रेटरी, अब ये, अब वो, उसके लिए हम उत्साहित रहते हैं। तो बहुत खतरनाक है, हमें देखते रहना चाहिए क्या चल रहा है हमारे अंदर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हृदय का अवलोकन करते रहे, जहां थोड़ा सा जंगली पौधा दिखा तुरंत उखाड़ के फेंक दे। कहने भक्ति में उत्साहित होते हैं, लेकिन वो उत्साह अंतरंगा शक्ति का नहीं बहिरंगा शक्ति का होता है। जैसे कि ओलंपिक्स में देखते हैं कि बड़े बेन जॉनसन नामक एथलीट था, गोल्ड मेडल मिल गया, 10 दिन के बाद मालूम चला उसने क्या किया था, स्टेरॉइड्स लिए थे, गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया, स्टेरॉइड लेके बहुत तेजी से भागा आ गया था। उसी वक्त से कई बार बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, ये अचीव करना है, ये करना है, ये करके दिखाना है, उत्साहित होते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। तो हमें देखना चाहिए कि अपने समय को हम सही ढंग से बिताएं। हमेशा याद रखें, वी आर मर्सी केस, करुणा, करुणा के कारण यहाँ पे है, गुरु महाराज की करुणा, गुरुवाद की कृपा, भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पे हूँ। थोड़ा सा अहंकार बढ़ेगा, पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, भक्ति में ढीलापन शुरू, तभी ये सिग्नल है, सिम्टम, ब्लड प्रेशर का सिम्टम है, अगर ब्लड प्रेशर है कि मतलब की हृदय की नाड़ियां कुछ कमजोर हो रही है, अंदर ब्लॉकेज हो रही है, अगर भक्ति में साधना में ढीलापन है, भक्तों के व्यवहार में ढीलापन है, वैष्णव सदाचार के पालन करने में ढीलापन है, अंदर कुछ ब्लॉकेज आ रही है, जंगली पौधे आने वाले हैं, तुरंत हमको काट के करना चाहिए और तभी उत्साहित रहे, तभी हम उत्साहित रह पाएंगे। तो ये हम देखें कि जितना कोई मिशनरी होगा वो कभी भी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं माना जाएगा जब तक कृष्ण भाव को शेयर करने के लिए। तो हमारे प्रहलाद महाराज के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, आगे जो प्रहलाद महाराज शिक्षा देंगे वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होगी। तो हमें देखे हैं कि हमारे जो भक्ति के जीवन में उत्साह बहुत आवश्यक है, उत्साह और उत्सुकता, ये हमारा जीवन है, बिना उत्साह के हम भक्ति कर नहीं सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हम उत्सुक नहीं है, उत्साहित नहीं है। तो हमारे भक्ति के जीवन में उत्साह बहुत फ्लक्चुएटिंग है, किसी भी ग्राफिक का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या बना हुआ ऐसे ही हो गया, कभी कभी बस भगवत धाम पहुंच गए, ये चीज सामना चलती है, कभी कभी कहीं का नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों है, ऐसे इतनी फ्लक्चुएशन हमारे उत्साह में क्यों आती है। पहला बार को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इतनी बड़ी घटनाएं उनके साथ, तो पहला बार तो उत्साह बढ़ता जा रहा है, एक अच्छा साधक होगा उसको जितना ज्यादा उसके जीवन में अड़चने आएंगी वो उतना ज्यादा उत्साहित हो जाएगा, और अड़चने आएंगी और उत्साहित हो जाएगा, रात लोग जब रशिया में प्रचार कर रहे थे उनको पुलिस जेल में डाल देती थी, फिर उनको दस के बाद फिर पुलिस शूटिंग करते थे। तो केजी भी परेशान थी, पुस्तकें कहाँ से आ गई। तो एक बार जो मिजोरी ऋषिकेश महाराज जी को उन्होंने अरेस्ट कर दिया, मालूम चल गया यही किंग पे इनके कारण आ रहा है। सब पत्थर में मीटिंग थी, अगर अब हम पुस्तक वितरण को ढीला कर देंगे तो केजी भी को पूरा विश्वास हो जाएगा यही वो व्यक्ति था जिसके कारण पुस्तक वितरण होता था। अब इनको अरेस्ट किया गया, हमें पुस्तक वितरण डबल करना चाहिए। जितनी बड़ी अड़चन उतना ज्यादा उत्साह। हमारे से क्या होता है, जितनी बड़ी अड़चन पहले माला ढीली और ढीली फिर ढील करना, बाद में करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम से निपट ले। हम कभी निपट ही नहीं सकते प्रॉब्लम से, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। तो हमारा उत्साह इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है, बताते हैं उत्साह का जीवन है श्रद्धा। जितनी हमारे अंदर प्रबल श्रद्धा होगी उतना ज्यादा हम उत्साहित रहेंगे। प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि को भी देखा नहीं था, महाराज आपसे काउंसलिंग लेने बड़ा परेशान हूं, मेरे पिताजी बड़े काम कर रहे हैं। कल पता क्या डिमांड है, त्रिशूल से लेकर आक्रमण किया महाराज, त्रिशूल से 5 साल का छोटा पातक महाराज हमने वो बड़े हाथी के चक्कर छुड़वा लिया महाराज, क्या आपको बताइए। कोई काउंसिल नहीं ले रहे, दर्शन करने नहीं आ रहे, एक बार बस माँ के घर में सुना उनसे, इतना ध्यान पूर्वक सुना कि पूर्ण रूप से श्रद्धा है कि बस यही संदेश मेरे जीवन की रक्षा करेगा, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो, इतनी श्रद्धा। तो जितना हमें श्री प्रभुपाद के तात्पर्य में श्रद्धा होगी, जितना हमें इस प्रोसेस में श्रद्धा होगी, उतने हम उत्साहित रहेंगे जीवन के व्यक्तिगत स्तर में। किसी भी स्तर में अड़चन आएगी हम उसको सहन कर पाएंगे अगर हम श्रद्धा रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और दूसरा, हम जितना अपने हेतु को जाने, सारे उनसा करो धर्म यथा भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता आत्मा सो प्रसिद्धति। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट तभी हो सकते हैं जब हमारी भक्ति के दो लक्षण हो, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के मोटिव के और हर परिस्थिति में हम भक्ति करें। ये भक्ति नॉन स्टॉप तभी हो सकती है, अप्रतिहता तभी हो सकती है जबकि ये अहेतु की। जब हमारे साधना के पीछे, भक्ति की सेवा के पीछे हेतु होगा, कोई अपना कोई पर्सनल मोटिव होगा, तो हम अप्रतिहता की सेवा नहीं कर पाएंगे, यानी कि हर परिस्थिति में हम सेवा नहीं कर पाएंगे। जब तक वो हेतु संतुष्ट होगा हम सेवा करते रहेंगे, जब तक हमारा मोटिव पूरा नहीं होगा हम सेवा से गिर जाएंगे। हर परिस्थिति में हम सेवा तभी कर सकते हैं, इस भौतिक जगत के द्वंद से हम तभी बच सकते हैं जब हमारी सेवा बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के होगी। और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है सनातन हर परिस्थिति में अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना। हम लोग अपने जीवन में कुछ हिडन मोटिव, कुछ स्वार्थ क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं स्वार्थ बताइए। हम भक्ति करते कुछ हमारे कुछ स्वार्थ होता है, छिपा होता है, ये हो जाएगा, क्यों रखते हैं स्वार्थ, उद्देश्य क्या है स्वार्थ को बनाए रखने का। वो करना चाहते हैं, सोचते हैं कि उस मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा, मैं खुश हूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन श्लोक में बता रहे हैं सारे लोग सब करो धर्माय था भक्ति दोषते आए तो क्या भक्ति था या आत्मा सुप्रसिद्धि। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट तभी होंगे जब हमारी सेवा बिना किसी हेतु के हर परिस्थिति में की जाएगी, तभी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। श्री प्रभुपाद जी भागवत के पहले संकीर्तन पर लिख रहे हैं कि हमारे जीवन में खुशी सुख उसी अनुपात में रहेगा जितने अनुपात में हम धार्मिक सिद्धांतों का पालन व्यक्तिगत स्तर पे और सामूहिक स्तर पे करते हैं। The degree we observe religious principles on the personal level or a collective level, to that degree we will experience happiness. जितनी मात्रा में हम धार्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में या अपने समाज में अनुकूल करते हैं उतनी ही मात्रा में हम खुश रह सकते हैं। धार्मिक सिद्धांत सनातन धर्म का ही सिद्धांत है, अहेतु की अप्रतिहता से सेवा करें। और ये हम केवल अपने जीवन में उतारकर नहीं, जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ही धर्म की स्थापना होगी, उतना हम प्रसन्न रह सकते हैं और उतना हम भौतिक द्वंद्वों से बच सकते हैं। भौतिक द्वंद से बचने के लिए हमें अपनी श्रद्धा को विकसित करना चाहिए, श्रद्धा को करने के लिए हमेशा उत्साहित करने के लिए श्रद्धा को हम विकसित कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से श्रवण कीर्तन स्वाध्याय अध्ययन करके भक्तों की सेवा करके। दूसरा, हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो वास्तविक ईंधन है, फ्यूल है, वो है हमारी कृतज्ञता। जितना हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञ होंगे, वैष्णव के प्रति कृतज्ञ होंगे, उतना हम उनकी कृपा मिलेगी और उतना हमारे हृदय में करुणा विकसित होगी। जो हमारे हृदय का कंपैशन है, करुणा है, वो हमारी कृतज्ञता पर निर्भर करता है, वही हम भक्ति हमें विकास कराएगा। और तीसरा, हम लोग जितना प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा करेंगे, मिशनरी कार्यों में सेवा भाग लेने से हमारा हृदय कोमल होता है ना। आप लोगों का भी अनुभव होगा, जब हम पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते हैं तब हम लोगों से मिलते हैं और भी जब दुखों को सुनते हैं तो हमारा हृदय बिगड़ता है। एक भक्त का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, तो जितना आप मिशनरी कार्य में करेंगे उतना हमारा हृदय कोमल। माता जी यहाँ पे हैं कि बैठे नहीं हैं, हाँ माता पीछे बैठे हैं, जो क्या नाम है, कैसे नाम तो भूल गया, श्याम सुंदर जी की पत्नी जो है दर्शना माता जी, उन्होंने बताया था कैसे वो एक बार बस में जा रहे थे, एक व्यक्ति था जैसे क्या था माता जी, वो अपंग था, दोनों बाजू नहीं थे, कैसे माता जी उनको भगवत गीता दी, गाँव में भारत में कहीं आने वाला था, शायद प्रोत्साहित किया और फोन पर बातचीत की, उनको गहन का पानी भी कहा, तो एक दया करुणा भगदा वितरित करते थे तो पॉकेट टूटे। कल मैं बताया थी मोची को उन्होंने भगवत गीता दी, मोची पूछ रहे मैं चमड़े का काम करता हूँ क्या मैं जपमाला कर सकता हूँ, तो एक करुणा है। जब हम बाहर जाते लोगों से मिलते हैं, लोगों को पुस्तक देते हैं, लोगों को हरिणा बांटते हैं, हमारा हृदय कोमल होता है। जब हृदय कोमल होगा तो दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए, अपने दुखों के बारे में चिंता नहीं करें, जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना और दुखी रहेंगे, जितना दूसरों को सुख देने के बारे में सोचेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, अगर आप दुख पैसे के बारे में सुखी हैं। तो ये तीसरा जितना मिशनरी एक्टिविटीज में कार्य करें। और दूसरा, हम लोग हतोत्साहित क्यों हो जाते हैं, जब हमें हमारी आशा के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हतोत्साहित हो जाते हैं। हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है, ये नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में सफल होने की कुछ उपलब्धियां चाहिए, हाँ जी अब हम ये बन गए, कुछ अचीवमेंट्स चाहिए, हमने ये अचीव कर लिया। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का अर्थ है कि हम कितने हृदय से गुरु की सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास ही हमारी सफलता है, कितना हम ध्यान को जप कर पा रहे हैं यही हमारी सफलता है। हम लोग उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं और फिर द्वेष करते हैं। उपलब्धियां सफलता का मापदंड नहीं है। और पांचवा, हमेशा उत्साहित रहने के लिए अपने मोटिव को चेक करें। हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, मैं प्रसाद पा रहा हूँ, मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, मैं अर्चना कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चेक करना बहुत जरूरी है। रूटीन में हम किए जा रहे हैं लेकिन क्यों कर रहा हूँ, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, अपने प्रति ईमानदार रहे, किसी भक्त के जाके अपने हृदय की बातों को बताएं, रिवील करें एज इट इज, जाके हम उत्साहित रह सकते हैं। ये तो क्या है, जंगली पौधे इतने बढ़ते जाते हैं, इतने बढ़ते जाते हैं कि हमारा छोटा सा भक्ति लगा बीज दिखाई नहीं देता और ये जंगलों जंगल बन जाता है जंगली पौधों का, बस उसी में हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा उत्साहित रह सकते हैं, कुछ स्टेप्स हमने सोचे थे। तो परमात्मा जी का जीवन बहुत ही शिक्षाप्रद है, ऐसे हम बहुत ही शिक्षा दे सकते हैं। हरे कृष्ण।
कई बार हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, खुद अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, कई बार कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो खुद हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं दूसरे से, तो उस पोजीशन में हमारे को क्या करना चाहिए,
क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए प्रशंसा।
देखो तुम
बुद्धि को विकसित करना चाहिए, ये तो मन के नहीं है, मन तो बहुत कुछ चाहेगा, मन तो चाहता है हमेशा हीरो बन के रहे सबके साथ, मन को याद रहना हीरो नहीं जीरो है। और किसी और फाइव पॉइंट जो मैंने सोचा ऐसे ही है, सबसे पहले अपनी श्रद्धा को हम विकसित करें, दूसरा प्रभुपाद जी दर्शन के प्रति कृतज्ञता को बढ़ाएं, तीसरा प्रभुपाद जी के मिशनरी कार्य में सेवा को बढ़ाएं, इससे हमारा हृदय कोमल होगा, चौथा ये जानने का प्रयास करें कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता उपलब्धियां नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है, और पांचवा नियमित रूप से अपने सेवा के जो विषय मोटिव है हेतु उसको चेक करते रहें, इससे हम चाहे कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन को हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कैलाश महाराज का जीवन देखें, प्रभुपाद जी का जीवन देखें, बहुत ही आपको समानताएं मिलेंगी। प्रभुपाद ने जब भारत में भी थे कितनी विफलताओं का सामना करना, जहां जाते थे विफलता, पहले प्रभुपाद अमेरिका में गए कैसी परिस्थिति में रहना पड़ा, जब वो गए थे गोपाल अग्रवाल जी के घर में उनकी पत्नी थी विदेशी थी, प्रभुपाद जी को अपने खाने का सामान जो भोग का सामान उसी फ्रिज में रखना पड़ता था जहाँ मीट होते थे, ऐसे ऐसी प्रभुपाद ने अपने आप को वहाँ रखा और फिर भी प्रभुपाद ने अपनी सेवा को नहीं रोका, फिर प्रभुपाद ने ये सारे कष्ट इसलिए सहे हम सबके करुणावश करके, इसी वजह से हम पूर्वती आचार्य शक्रों से हमारे जीवन को पढ़ते हैं, प्रभुपाद के जीवन को पढ़ते हैं, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए कि इन सब ने नेतृत्व जीवन हमारे लिए आए, हमारे उद्धार के लिए किसी से प्रभु ने रात और दिन जाग कर हमारे लिए परपस लिखे धन्यवाद।